भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपवे तिनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अने महाराज अम्बरीश भक्तों में आते हैं। इनका नाम अम्बरीश क्यों पड़ा कि इनके पिता का नाम था नाभाग। उनकी बड़ी सुलक्षणा पत्नी थी, रानी थी, उसके कोई संतान नहीं था। पति और पत्नी दोनों भगवान के बड़े भक्त थे। एक दिन बहुत भाव में डूब करके भगवान से प्रार्थना की, प्रभु मेरे कोई संतान नहीं है, वंश नहीं चलेगा, निसंतान व्यक्ति का कोई न कोई पाप होता है, इस कारण से वह अपने संतान का मुख नहीं देख सकता है। तो प्रभु पिछले जन्म में कोई पाप किया होगा जिसके फल से संतान नहीं हो रही है, अब जो भी पाप हुआ उसको आप क्षमा करो, कोई संतान दो। ऐसी थी मन में इच्छा और खूब भगवान से प्रार्थना की। तो सच्चे हृदय से भगवान से प्रार्थना करने पर भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा बोलो अम्ब। अम्ब बोलते हैं मां को, बोलो अम्ब तुम्हारी क्या इच्छा है। तो वो रानी बोली कि आप कौन है, मैं पहचान नहीं पाई। तो भगवान ने कहा मैं ईश। देखो भगवान ने संबोधन दिया अम्ब, कहा कि कौन है आप, कि मैं ईश हूं। तो अम्ब ईश, अम्बीश का अम्बरीश नाम हो गया। दोनों ही नाम भगवान के मुख से निकले ना तो नाम अम्बरीश हो गया। भगवान ने दर्शन दिए और कहा कि बोलो क्या चाहते हो। कि महाराज संतान प्राप्ति के लिए हमने प्रार्थना की। भगवान ने कहा तुम्हारे कर्मों के अनुसार तो संतान होगी नहीं, परंतु तुमने मेरी भक्ति कर ली तो ये भी व्यर्थ नहीं जाए, और मेरे से मांगा ये व्यर्थ न जाए। तो मेरा भी कायदा रह जाए, तुम्हारा भी कायदा रह जाए, तो मैं तुम्हारा बेटा बनूंगा। मैं कहीं कर्मों के फल से आता नहीं, कर्मों के फल से रुकता नहीं, इसलिए मैं तुम्हारा बेटा बनूंगा। तो वही आगे जाकर अम्बरीश भगवान ही बने। अम्बरीश जी बचपन से ही भक्ति में लगे हुए थे। तो साक्षात जब भगवान है तो भक्ति में लगने की क्या जरूरत, दुनिया को बताने के लिए। दुनिया को बताने के लिए भगवान एक उत्तम भक्त कैसा होता है ये आदर्श स्थापित करने के लिए। जैसे राम जी सारे संसार के बाप है, वो दशरथ जी को बाप क्यों मनाए। भगवान कृष्ण है संपूर्ण जगत के पिता है, उन्होंने वसुदेव जी को पिता क्यों मनाया, देवकी को मां क्यों बनाया, यशोदा को मां क्यों बनाया। उत्तम से उत्तम लड़का अपने मां बाप के लिए क्या करे उसका उदाहरण रखने के लिए। भगवान के अवतार भगवान के लिए नहीं होते हैं, भगवान के अवतार हम लोगों के लिए होते हैं। हम लोगों को भगवान ठीक मार्ग पर लाने के लिए अवतार लेते हैं। तो एक श्रेष्ठ भगत क्या उसके मन में भावना रहती है, इसलिए भगवान अम्बरीश के रूप में अवतार लिए। सवई मन कृष्ण पदारविंदयोर्निवेशितम् तत् सवई मन कृष्ण पदारविंदयोर्वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने। उन्होंने पहले मन में खूब विचार किया कि हमको मानव शरीर किस काम के लिए मिला है। तो जितनी इंद्रियां मिली है, जैसे हमको कान मिला है, तो कान किस लिए मिला है? अच्छी बात सुनने के लिए, सत्संग की बात सुनने के लिए, भगवान की बात सुनने के लिए और दूसरों की प्रशंसा सुनने के लिए। दूसरों की प्रशंसा सुनने के लिए कान है, निंदा सुनने के लिए नहीं है। घंटाकर्ण नाम का एक भगत हुआ, घंटाकर्ण, बीच में याद आ गई बात। वो क्या है, अपने यहां कान के यहां घंटा बांध लिया, इधर भी दोनों तरफ घंटा। कोई लोग उनसे मिलते भगवान की चर्चा करते तो बड़े प्रेम से सुनते, और कोई संसार की चर्चा होती तेरी मेरी की बातें उसकी निंदा सिर हिला देते, तो टन 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 आवाज जाती। लोगों ने पूछा कि महाराज आप ऐसा क्यों करते हो घंटाकर्ण जी, माथा क्यों हिलाते हो, सिर क्यों हिलाते हो, घंटा क्यों बजाते हो? उन्होंने कहा कि देखो किसी की निंदा सुनते हैं तो उसका संस्कार हृदय में जाता है। आज हम रुचि पूर्वक किसी की निंदा सुनते हैं तो वही निंदा वाला काम हमारे हाथ से चालू हो जाता है। किसी की निंदा सुनने में सबसे बड़ा नुकसान यह है कि वो निंदनीय काम हमारे अंदर गया, हमने बड़े चाव से उसको सुना और फिर आगे जाकर के वो बिगड़ जाता है। वो स्वभाव हमारे में आ जाता है, हमारे में था नहीं, पर दूसरे की निंदा सुनते सुनते हमारे द्वारा भी वही कर्म हो जाता है। इसलिए सुनना नहीं चाहिए, सुनना तो केवल भगवान की बात, संतों की बात, महापुरुषों की बात, कल्याण की बात, इसलिए कान मिला है। तो अम्बरीश जी ने कानों का सदुपयोग इसलिए किया, वाणी का उपयोग। उन्होंने कहा वाणी क्यों मिली है, वाणी मिली है किसी से भी मिलो प्रेम से बात करने के लिए। वाणी के अंदर अमृत है और वाणी के अंदर ही जहर है। मीठी बात बोलिए, मीठे तरीके से बोलना चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप ही शीतल हो। हम यदि किसी को कठोर वाणी में बोलेंगे तो हमारा हृदय पहले जलेगा, हृदय में जलन होगी, उसके बाद अगले के मन में जलन होगी, इसका पाप लगेगा। यदि मनुष्य केवल एक वाणी पर कंट्रोल कर ले तो सब बातें उसकी ठीक हो जाएंगी, व्यवहार बहुत अच्छा होगा। संसार के व्यवहार में जितने दोष फैलते हैं वो वाणी से फैलते हैं। गीता में कहा कि सत्य बोली जाए, बात प्रिय बोली जाए, हितकारी बोली जाए, चापलूसी भी नहीं करे, झूठी प्रशंसा नहीं करे। मन में तो जानते हैं कि आदमी इस प्रशंसा के लायक नहीं है और ऊपर से हम प्रशंसा करेंगे, प्रशंसा करने से राजी हो जाएगा, ये असत्य है। सेठ जी तो जीते जी किसी की प्रशंसा करने में बहुत संकोच करते थे और मरने के बाद तो उसकी खूब प्रशंसा करते। लोगों ने कहा सेठ जी जीते जी तो थे कि बोलता ही बोली, और मरने के बाद इतनी प्रशंसा करते हैं। सेठ जी से बैर विरोध करने वाला व्यक्ति बैर विरोध करने वाला व्यक्ति भी वो जब मरा तो सेठ जी ने उसकी बड़ी प्रशंसा की कि इस आदमी के मन में ये भाव था ये था कि आपने तो पहले तो बताया नहीं कि पहले बताने के लिए होती उसकी प्रशंसा उसी कोई सुनाई जाए वो व्यक्ति का दुर्भाग्य होता है। मान लो आपने यदि हमारे कानों में हमारी प्रशंसा की बात कही आपका तो बड़प्पन है लेकिन हमने यदि हमारे कानों से अपनी प्रशंसा सुनी है तो हमारे लिए काला दिन है। अपनी प्रशंसा चले तो उस समय तत्काल बात को घुमा देना चाहिए क्योंकि इससे पुण्य क्षय होता है। प्रशंसा एक भगवान की जानी चाहिए या संत महापुरुष जो तत्वज्ञ महापुरुष है उनकी प्रशंसा करनी चाहिए क्योंकि भगवान के कोई पुण्य होता नहीं, कोई भगवान के पुण्यों का नाश होगा नहीं, इसलिए प्रशंसा से बहुत सावधान रहे और निंदा से भी सावधान। निंदा तो करनी नहीं और प्रशंसा सुननी नहीं। तो वाणी का सबसे बड़ा उपयोग है भगवत संबंधी चर्चा करना और हाथ का सबसे बड़ा उपयोग क्या है कि अपने परिवार में बड़े बूढ़े छोटे जो भी है उनसे हाथ से सेवा करें। बंबई में एक करोड़पति परिवार को देखा, करोड़पति अरबपति भी कहे तो कोई बड़ी बात नहीं, तो उनका लड़का अपने हाथ से अपने दादा दादी की सेवा करता, मैली से मैली सेवा करता अपने हाथ से। नौकरों से दूसरा काम करवा लेते पर उनकी जो मलिन सेवा होती जिसमें प्राय लोग सूख करते हैं वो खुद करता हुआ अभी भी जीवित है। वो अपने हाथ से दादा दादी की सेवा करता था। तो हाथ क्यों मिले हैं? हाथ मिले हैं अपने से बड़े बूढ़ों की सेवा करना। माता पिता दादा दादी गुरुजन इनकी सेवा करें या मंदिर के अंदर भगवान का श्री विग्रह वहां सेवा करें, दीन दुखी की सेवा करें। और नेत्र क्यों मिले हैं कि नेत्र दो के दर्शन करने के लिए। एक तो गुरुजन, गुरुजन का अर्थ है कि माता पिता आदि इनके चरणों का दर्शन करना। लक्ष्मण जी भगवान कृष्ण को भगवान राम को प्रणाम करते, सीता जी को प्रणाम करते रोज, क्योंकि बड़े भाई की स्त्री होती है वो मां के समान होती है। तो जब बंदरों के बीच में वो पोटली डाली सीता मां ने तो खोला गया, राम जी तो उनको आभूषणों को देखकर रोने लगे कि लक्ष्मण मैं तो पूरा पहचानता नहीं हूं, तू पहचानता है ना इन आभूषणों को देख, सीता की है ना। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि इनमें जो चरणों के आभूषण है ये तो मैं पहचानता हूं, बाकी का मैं आभूषण पहचानता नहीं। हाथ के आभूषण है, कान के आभूषण है, भुजबंद है, ये मैं नहीं पहचानता। क्यों? क्योंकि मैं उधर देखता ही नहीं था, मैं तो केवल नित्यम पादाभिवंदनात् रोज उनके चरणों में प्रणाम करता था। तो चरणों में जो नूपुर है ये नूपुर तो मुझे मालूम है सीता जी के हैं, लेकिन बाकी अंगों के जो आभूषण है वो मैं नहीं पहचानता, चूड़ी नहीं पहचानता, अंगूठी नहीं पहचानता, पता नहीं। नित्यम पादाभिवंदनात् कोई मामूली आभूषण थे। रामचरितमानस में लिखा है ना, अत्रि ऋषि और अनुसुया जिनके बड़े दिव्य कुंडल दिए, उनको बड़े दिव्य उनको वस्त्र दिए सीता जी को, कहा कि देखो वनवास में काम आएंगे, देखो कहां यदि सरोवर मिले न मिले, स्नान करने का मौका मिले न मिले, इसलिए तुम ये वस्त्र पहनोगे तो कभी मेले नहीं होंगे वस्त्र, और ये तुम्हारे शरीर पर रहेंगे, शरीर पर ही लगे रहेंगे, कभी मेले नहीं होंगे, हरदम शरीर के चिपके रहेंगे वस्त्र और मेले नहीं होंगे। अनुसुईया जी को तो मालूम है कि रावण हर लेगा और लंका के यहां जाकर के और ये इस प्रकार से वहां के पानी से स्नान करेगी मलिन जल से, इसलिए स्नान करने की सीता जी को लंका में जरूरत ही नहीं रही। देवता लोग आए सीता जी के पास लंका में और कहने लगे कि देखिए माता जी, आप ये देवलोक से आई हुई खीर है, इसको स्वीकार कर लीजिए, आपको भूख नहीं लगेगी और प्यास नहीं लगेगी, क्या पता ये मायावी लोग आपको क्या खिला देगा, मायावी लोग मायावी पदार्थों से क्या खिलाकर माया चला दे, इसलिए आप ये ले लो। इंद्र खुद आया, इंद्र कब आया कि जब राक्षसियां दिन में सो गई थी तब आया, रात्रि में जागती है, रात्रि में राक्षसी माया काम करती है, तमोगुणी माया ज्यादा काम करती है, इसीलिए अपने लोग रात्रि में ज्यादा नींद आती है, अपने दिन में नींद इतनी नहीं आ सकती, रात भर का जगा हुआ आदमी एक रात में जितना सोया उतना उस समय दिन में नहीं सो सकता, पूरी रात जागरण करते हैं, पूरे के लोग पूरी रात जागरण करते हैं और दिन के अंदर दो घंटा या ज्यादा से ज्यादा तीन घंटा सो जाएगा, उनको तृप्ति हो जाएगी इसमें, और रात में छह घंटा सोते हुए भी तृप्ति नहीं होती, खूब सोते रहो बोले सुबह तक छह बजे तक तो आराम से नींद लेते हैं, और सात्विक पुरुष होते हैं उनको जल्दी नींद आती है, जल्दी उठते हैं। तो दिन में आया इंद्र, दिन में आकर के इंद्र ने ले जाकर वो दिया पायस, सीता जी ने स्वीकार कर लिया, भूख प्यास कुछ। इसीलिए आप देखो रामचरितमानस में सीता जी के खाने पीने का कहीं कोई, रामचरितमानस हो चाहे रामायण हो चाहे कुछ भी हो, कोई वहां पर वर्णन नहीं मिलता। राम जी के साथ वन में कंदमूल फल खाते ये आता है, परंतु ये नहीं आता कि लंका में सीता जी किस प्रकार से भोजन करती थी, कहीं रामायण में नहीं आता। क्यों ऐसा दिव्य भोजन किया हुआ था कि भूख लगेगी, तो हाथ का उपयोग सेवा करने का, सेवा करने का, और नाक का उपयोग है भगवान के चरणों में लगे रहने वाली तुलसी है, उस तुलसी के गंध का उपयोग करना, और रसना का उपयोग इस शरीर को चलाने के लिए भगवान के प्रसाद को स्वीकार करना। आजकल लोगों की भाषा होगी हम खाना खा के आते हैं, खाना खाना ये तो होती है सामान्य आदमियों की बात, लेकिन सत्संगी लोगों की बात होती है भोजन करना, संतों की बात होती है प्रसाद पाना, प्रसाद पाना, भगवान का प्रसाद समझ करके जो भोजन किया जाएगा उस भोजन में कोई कमी भी रह जाए, कोई रोटी सिकने में कमी रह जाए या और कोई उसमें पदार्थ की कमी रह जाए, तो वो कमी से शरीर पर नुकसान नहीं होता। आजकल लोग भोजन करते हैं, अच्छा खाते हैं, तब भी बीमार ज्यादा होते हैं, क्यों कि वे प्रसाद बुद्धि से भोजन नहीं करते हैं, वो खाना खाने की दृष्टि से भोजन करते हैं, हमको भूख लगी हम खाएंगे। तो ये जो भावना रहती है उससे खाए हुए पदार्थ से भूख तो दूर होती है, पर उसका एक सात्विक रस बनता है वो नहीं बनता, भगवान के भक्त होते हैं वो प्रसाद समझ के भोजन करते हैं, प्रसाद समझ के। एक भगवान का भक्त था, उसके भोजन में जहर मिला दिया। उसकी पत्नी को पता चला है, वो अपने ससुराल आया हुआ, उसकी पत्नी को पता चला कि बंगाली मिठाई बनाई है और इसमें ये जहर मिला हुआ है। अब वो मुंह से तो कैसे कहे, माँ बाप की बदनामी हो। तो उसने क्या किया कि कागज लिख दिया, कागज लिख करके और उस बंगाली मिठाई के अंदर यूं ऊपर रख दिया। अब उसने क्या किया, जो थाली आई, आंख बंद करके भगवान के भोग लगाया और आंख खोल के देखता है उसमें लिखा हुआ है कि इसमें जहर है। अब वो असमंजस में पड़ गया कि इसको खाऊं नहीं खाऊं। तब देखा कि मैंने तो भगवान के प्रसाद लगा दिया, अब जहर है तो भगवान ने भी ले लिया, तो भगवान के कुछ नहीं होगा तो मेरे क्या होगा, ले लिया उसने और कुछ नहीं हुई। और वो जय वो खा रहा था भोजन, पास में बैठी स्त्री गारे मर जाएगा मर जाएगा। कुछ भक्तों की ऐसी लीलाएं देख करके हर आदमी को वैसी की वैसी क्रिया नहीं करनी चाहिए पर भाव बनाने चाहिए। आजकल क्या है, क्रिया कर रही है। अच्छा उनके कुछ नहीं हुआ, तुम भगवान के भक्त हो, हम तुम्हारे भोजन में ये मिलाते हैं, लेकिन तुम्हारे कोई असर होता है कि नहीं। रामजी कहने साहब ने तो हमारे कुछ नहीं होगा, वैसा भाव तो है नहीं, क्रिया कर लेंगे मुश्किल हो जाएगी। क्रिया नहीं करनी चाहिए, भाव बनाना चाहिए। भाव भाव अम्बरीश का ऐसा ही था, अम्बरीश के सदा ही भावना रहती थी और कामम च दास्य, उनकी एक ही इच्छा में भगवान का दास होकर रहूं, भगवान का दास होकर रहूं। और मन मन उन्होंने देखा कि मन जैसी बढ़िया चीज तो आज तक संसार में भगवान ने बनाई नहीं। ये मन जिसको हम लोग इतनी गालियां निकालते हैं, ये मन नहीं मानता, ये मन ऐसा है, मन ऐसा है, मन लोभी मन लालची, ऐसे करके मन ही मन पर दोष देते हैं। अम्बरीश ने कहा नहीं, मन बहुत अच्छी चीज है, मन नहीं बनाते तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। क्यों? क्योंकि मन है वो एक क्षण में एक चीज से हटकर दूसरी चीज में लग जाता है। जैसे कोई आदमी कुत्ते का ध्यान करता है और तत्काल उसको कोई भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कराए, तत्काल वो कृष्ण का ध्यान कर लेते हैं। ये मन ही ऐसा है जो एक विषय से हटकर दूसरे विषय में जल्दी पहुंच सकता है, नहीं तो कोई साधन नहीं। किसी आदमी का कल्याण करना और वो यूं ही दूसरी बातों में घुमावा हो और कोई कह जा रहे भैया आप तुम्हारा थोड़ा सा जीवन थोड़ा भगवान को याद कर रहे हो, भगवान का चित्र हो, चित्र दिखाते ही वह अपने सारे विचारों को छोड़ करके भगवान में लग जाता है। ये ताकत एक मन की है, एक जगह से हट करके दूसरी जगह तत्काल पहुंच जाए। इसलिए कहते हैं कि मन के समान संसार में वेगशाली कोई नहीं है। एक हनुमान जी को बताया मनोजवम, मनोजवम जव मन वेग, मन के समान वेग वाले हनुमान जी महाराज। तो इसी साधना के अंदर अम्बरीश लगा रहता था, नारदादि ऋषि उसके वहां आते रहते थे और अम्बरीश की भाव भक्ति देख करके नारद जी बड़े खुश होते हैं और नारद जी यत्र तत्र सर्वत्र घूमते हुए अम्बरीश की बड़ी प्रशंसा करते। एक बार प्रयागराज के अंदर बहुत संत महात्मा इकट्ठे हुए थे, उन संतों के बीच में अम्बरीश जी चरित्र के नारद जी चरित्र गा रहे थे कि अम्बरीश जी ऐसे, अम्बरीश जी ऐसे, अम्बरीश जी ऐसे। तो दुर्वासा जी वहां बैठे हुए थे, दुर्वासा जी ने विचार किया कि जहाँ जाता हूँ नारद जी मुझे देख देख करके विशेष रूप से अम्बरीश की महिमा गाते हैं। तो दुर्वासा जी मन से बड़े खुश थे। देखो दुर्वासा, दुर्वासा माने दुर्वासा का अर्थ लोग नहीं जानते प्राय। दुर माने खराब और वासा माने वसन वस्त्र, उनके वस्त्र बड़े खराब थे। अभी नापासर के रेलवे स्टेशन से किसी को दिल्ली जाना है और उसके पास लाख दो लाख रुपए का सामान है तो वो बन ठन करके नहीं जाएगा। खूब बढ़िया कपड़ा पहनेगा, खूब बढ़िया टिप टॉप होकर के जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा। तो मेला कुचेला कपड़ा पहनेगा, फटी पुरानी कोई बोरी लेगा, उस बोरी के अंदर कोई अच्छा पूरा प्लास्टिक का थैला लेकर उसमें कुछ वस्तु रख करके ऊपर उसमें और कुछ मिला लेगा। लोगों को पता ही न चले कि इसके पास कोई लाख दो लाख रुपए का सामान है क्या, और लाकर के लिए थर्ड क्लास के डिब्बे में बैठेगा और लाकर के ये रख देगा। लाख दो लाख रुपए का सामान है उसके पास, दो लाख रुपए और ये पटक दिया उसने। वो मन से तो देखता है उधर, लेकिन बाहर से वो उपेक्षा से ही रहता है। लोग भी देखते क्या है, कोई सामान होगा जा रहा है क्या, साथ में भोजन का टिफिन रखेगा तो सूखी रोटियां और चटनी वगैरह, ये बस चटनी नमक मिर्ची की चटनी रहेगी, वही भोजन रहेगी, कुछ गरीब बात नहीं। शायद इसके पास टिकट भी है, पता नहीं। और उसके बाद दो लाख रुपए का सामान, पर अपने सामान को छिपाने के लिए बाहर से खराब वस्त्र पहनता है। ऐसे ही दुर्वासा जी एक महान ऋषि थे, बड़े महान ऋषि, परंतु वे ऐसा आचरण करते थे भक्तों के सामने कि उनकी तो कोई बड़ाई करता नहीं और वे भक्तों की बड़ाई करवा देते थे। लोही दुर्वासा से डरे, अरे दुर्वासा से, दुर्वासा से। दुर्वासा का हृदय बहुत अच्छा था। जैसे उसके पास दो लाख रुपए का सामान है पर कपड़े की तरफ देख करके हम उसकी उपेक्षा करते हैं। दुर्वासा जी ने सोचा कि नारद जी इतनी प्रशंसा करते हैं अम्बरीश की, तो सारे जगत को नारद जी को कहने की क्या जरूरत पड़े, भक्त को तो मैं प्रसिद्ध करूं, उसके साथ ऐसा बर्ताव करूं कि लोग उस भक्त की ज्यादा महिमा गाएं। तब नारद जी महाराज के बाद कहने के बाद दुर्वासा जी गए परीक्षा लेने। परीक्षा क्या लेनी थी, अम्बरीश को उज्ज्वल करना था। अम्बरीश के वहां गए, अम्बरीश जी थे यमुना नदी के किनारे मधुवन में, और उन्होंने एक साल से द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत किया। द्वादशी प्रधान एकादशी क्या है कि द्वादशी प्रधान एकादशी है कि एकादशी के अंदर जब द्वादशी की घड़ी आ जाए वो वैष्णव लोग एकादशी करते हैं, और दशमी के दिन एकादशी का योग बन जाए तो वो शैव लोग व्रत करते हैं। और जिस एकादशी में दशमी और द्वादशी दोनों का योग होता हो तो दोनों जने व्रत करते हैं। ये घड़ियों घड़ियों के जितना हमारा भारतीय ज्योतिष गणित शास्त्र गहराई से प्रवेश करता है सौर मंडल में, नक्षत्र मंडल में, इतना किसी किसी भी धर्म के अंदर इतना गहरा प्रवेश नहीं हुआ है। बिल्कुल ये घड़ी कितनी देर तक रही, ये घड़ी की ये तिथि कितने घड़ी पल तक रही, इतना विचार किसी पंचांग में नहीं है। लोग कहते हैं कि देखो अंग्रेजों का पंचांग देखो, जब भी इनके मकर संक्रांति आती है 14 जनवरी को ही आती है। अंग्रेजों का पंचांग बड़ा विचित्र है, ये हमने कान से सुना कि जब भी इनके मकर संक्रांति 14 जनवरी को ही आएगी, चाहे हमारा एक महीना बढ़ जाए, चाहे साल में कितनी तिथियां टूटे घटे बढ़े, परंतु 14 जनवरी को संक्रांति आती है। कितना अंग्रेजों का विचित्र पंचांग है। हम कहते हैं कि आप एक संक्रांति को लेकर बोलते हो, हमारे यहाँ जितने त्योहार हैं, अब रक्षाबंधन श्रावण शुक्ला पूर्णिमा को ही आएगा, चाहे दो श्रावण हो जाओ, आखा तीज वैशाख सुदी तीज को ही आएगी, चाहे दो वैशाख हो जाओ, दशहरा आसो सुदी दशमी को ही आएगा, चाहे दो आसो हो जाओ, दिवाली कार्तिक कृष्णा अमावस्या को ही आएगी, चाहे दो काती हो जाओ, जितने त्योहार हैं हमारे, होली है वो फाल्गुन शुक्ला पूर्णिमा को ही होगी, चाहे कितने ही तिथियां घटे बढ़े हो, हमारे सारे त्योहार सभी निश्चित समय पर आते हैं। रामनवमी चैत्री नवमी को ही आएगी, चाहे दो चैत हो जाओ, क्या फर्क पड़ता है उससे। इसलिए हमारे पंचांग की कोई शानी नहीं है, इसके बराबर कोई दूसरे पंचांग है ही नहीं। अस्तु तो द्वादशी प्रदान एकादशी का व्रत किया अम्बरीश जी ने, तो अम्बरीश जी वैष्णव और दुर्वासा जी वैष्णव है, वो भी आए, वो एकादशी के दिन वो आए, एकादशी की घड़ी अब समाप्त हो रही थी और द्वादशी की घड़ी लग करके थोड़ी देर में त्रयोदशी का प्रदोष व्रत आने वाला था, वो द्वादशी की घड़ी में भोजन पारणा करनी तो कर लो, तो उस पारणा के समय में थोड़ा सा पहले आए नारद जी महाराज 10,000 शिष्यों के साथ, राजन हमारी एकादशी हम आज ही पारणा करेंगे, ठीक है महाराज। स्नान करने गए और देरी कर दी वहां, अब कहा कि भाई अब आगे त्रयोदशी आ जाएगी, प्रदोष व्रत आएगा, अब एकादशी आ गई, क्या कर, नहीं लेंगे तो पारणा नहीं हो पाएगा, तो अच्छे अच्छे संतों से ऋषियों से मुनियों से पूछा, तो कहा कि आप भगवान का चरणामृत ले लीजिए, तुलसी और चरणामृत ले लिया और पारणा हो गई। इतने में ही आ गई दुर्वासा जी, दुर्वासा जी आए, खूब बिगड़े वो अम्बरीश पर, कितना बिगड़े वही जाने, खूब नाराज हो गए। नाराज होकर के उन्होंने अपने बाल से, अपने बालों में से एक बाल को उखाड़ करके पृथ्वी पर पटक दिया, तो आग होगी उसको कृत्या बोलते हैं, और कह दिया जाओ इस अम्बरीश का जड़ा दो। अम्बरीश बेचारा सफाई भी नहीं दिया कि महाराज आपने इतनी देर कर दी, ये हुआ वो, बड़े आदमी होते हैं वो कभी सफाई नहीं देते अपने, ये बहुत ऊंची बात है, सफाई देने का है कि कहीं कहीं हमारी भूल है, कोई आदमी कहे ना कि भाई हम बिल्कुल इसमें निर्दोष हैं, अपने मुख से अपनी निर्दोषता कहे, इसका मतलब कहीं ना कहीं दोष है उसमें, कहने की जरूरत ही नहीं, अपनी सफाई देने की अच्छी बात है, ठीक है, तुम दोषी मान, तुम मान, बड़े आदमी कभी अपनी सफाई नहीं देते, तो नहीं दी। दुर्वासा जी के सामने खड़े रह गए, अब कृत्या आई तो अकस्मात सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया, भगवान कृष्ण तो सबके साथ, भगवान तो सबके साथ ही है ना, तो प्रकट हो गया सुदर्शन चक्र, उसने कृत्या को समाप्त कर दिया, दुर्वासा के पीछे चला, दुर्वासा सब जगह गए, किसी जगह उनको शांति नहीं मिली। अब देखो दुर्वासा जी अम्बरीश का मान बढ़ाने के लिए सब लोगों में अम्बरीश का मान बढ़े, शिवजी के पास गए, कह लगे शिवजी मैं तो आपका बेटा हूं, आपसे पैदा हुआ हूं। शिवजी ने कहा नहीं, जो भगवान विष्णु के भक्तों के साथ द्रोह करता है वो काय का मेरा नहीं। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने नहीं रखा। विष्णु भगवान के पास गए, विष्णु भगवान ने कहा दुर्वासा जी क्या करूं, अहम भक्त पराधीन, भक्तों के तो अधीन रहना मेरे बस की बात नहीं। अच्छी बात, तुम एक काम करो अम्बरीश की शरण में चले जाओ। आप लोग भागवत सुनते ही है, अम्बरीश की शरण में गए और भगवान ने पहले खूब धमकाया दुर्वासा जी को। दुर्वासा जी, आदमी के पास में धन और विद्या दो चीज आती है तो इससे अच्छा काम भी होता है और बुरा काम भी होता है। धन से आदमी, अब आपके पास पैसा है तो आप गीता प्रेस की पुस्तक भी खरीद सकते हो, गौशाला में गाय के लिए आप घास फूस भी डला सकते हो, आप यहाँ यज्ञ वगैरह भी कर सकते हो, अच्छे से अच्छे काम में भी लगा सकते हो और बुरे से बुरे काम में भी लगा सकते हो। लगाने वाले लगाते ही, कोई अच्छे काम में लगाते हैं तो कोई बुरे काम में लगाते हैं, कोई मदिरा पीने में लगाते हैं और कोई गौ सेवा में लगाते हैं। तो विद्या और धन ये दो शक्तियां हैं। विद्या के द्वारा शास्त्राध्ययन करें, ये तो है इसका सदुपयोग। शास्त्राध्ययन न करके और विद्या का घमंड करना, दूसरे को परास्त करना, दूसरे को मूर्ख समझना, खुद को ज्यादा बुद्धिमान समझना, ये विद्या का दुरुपयोग। तो दुर्वासा जी, आपके पास में तपस्या रूप एक ऐसी शक्ति आई जिसका बहुत दुरुपयोग करते हो आप, इसीलिए आपको बड़ा घमंड हो गया है। जाओ अम्बरीश के चरणों में गिरो। दुर्वासा जी बहुत प्रसन्न हुए सुनकर, अम्बरीश के चरणों में गिरने लगे। अम्बरीश ने कहा वाह महाराज, ये उल्टी रीत, समुद्र से गंगा जी निकलती है कि हिमालय से गंगा जी निकलती है? हिमालय से निकलती है। तो महाराज मैं तो आपका दास हूं, आप मेरे पैरों में क्यों पड़ते हो? मैं आपके पैरों में पड़ता हूं। फिर भोजन किया, तृप्त हुए, बहुत खुश हुए दुर्वासा जी। दुर्वासा जी ने कहा कि संसार में भक्ति का प्रभाव सबसे अच्छा होता है, क्योंकि भक्ति का जो आचरण करता है, ध्यान से सुनिएगा, कहते हैं भक्ति का आचरण करने से उसका स्वभाव अपने आप ही अच्छा होने लगता है, अपने आप। उसको खुद को पता नहीं चलता, लोगों को पता चलता है कि इसके स्वभाव में बड़ा अंतर आ गया, वाणी में अंतर आ गया, व्यवहार में अंतर आ गया, हृदय के भावों में अंतर आ गया, खुद को पता नहीं चलता लेकिन अंतर आ जाता है भक्ति के कारण। जितना जल्दी भक्ति से स्वभाव सुधरता है उतना जल्दी दूसरे साधन से जल्दी नहीं सुधरता है, क्योंकि भक्ति है ये भगवान की, इसमें कृपा शक्ति ज्यादा होती है, भगवान पर बल ज्यादा होता है। ज्ञान मार्ग में और योग मार्ग में साधक के ऊपर बल रहता है, इसलिए गीता में कहा लोकेस्मिन द्विविधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मया लगे। संसार में दो निष्ठाएं हैं, आत्मा को लेकर तो ज्ञान निष्ठा है और संसार को लेकर के है योग निष्ठा। लेकिन भगवान की जो भक्ति करता है वो भगवान की भक्ति करने वाला लोक के निष्ठाओं में नहीं रहता है, वो भगवान की निष्ठा में डूब जाता है, वो लोक निष्ठ न होकर के भगवान निष्ठ हो जाता है, वो भगवान निष्ठ हो गया। भगवान निष्ठ हो गया तो भाई भगवान का स्वभाव उसमें उतरेगा ही। बाप का चेहरा पुत्र में उतरता है, माँ का चेहरा पुत्र में उतरता है, बाप की चाल बेटे में आती है, बाप का बोलने का जो लहजा है वो बेटे में आता है, बहुत एकदम उसमें आता है, पुत्र में वो सब बात आती है। माता का पिता का चेहरा रूप रंग चाल ढाल पुत्र में आती है, क्योंकि वो माता पिता का स्वरूप है, अंश है। लेकिन जीवात्मा तो साक्षात भगवान का स्वरूप ही है, तो भगवान के गुण धर्म क्यों नहीं आएंगे? जो जो भगवान की तरफ चलेगा, जो जो भगवान के गुण उसमें अपने आप ही आते जाएंगे। इसलिए अम्बरीश जी तो बिल्कुल क्षमाशील हो गए, सुदर्शन चक्र को बोल दिए कि हे सुदर्शन चक्र जी, आप हमारे दुर्वासा जी को बचाओ। सुदर्शन चक्र शांत हो गया और अंत में दुर्वासा जी ने निर्णय कर दिया कि तपस्या आदि जितने साधन है उनमें भक्ति का साधन सबसे ऊंचा है, सबसे श्रेष्ठ है। मान अम्बरीश का ऐसा चरित्र। अब अम्बरीश की सब जगह महिमा फैल गई कि भगवान के बड़े भक्त हैं, भगवान के बड़े भक्त हैं। तो एक राजा की लड़की थी, उस लड़की ने अपने पिताजी से कह दिया कि पिताजी, मेरा विवाह तो अम्बरीश के साथ होना चाहिए। पिता ने कहा कि बेटा, लड़की अपने विवाह के लिए स्वयं थोड़े ही अपने पति को चुनती है, तूने ये कैसे साहस कर लिया? तो कहा कि क्या बताऊं, मैंने तो साहस कर लिया कि मैं अम्बरीश को अपना पति बनाना चाहती हूं, मेरा विवाह करो तो अम्बरीश के साथ करो। बेटा, दूसरी बात यह है कि अम्बरीश बहुत बड़े राजा हैं, उनके सामने हम कुछ भी नहीं है। अम्बरीश के घर पर हमको पहरेदार भी रखा जाए तो भी बहुत ऊंचा पद है, इसलिए एक छोटी सी रियासत है हमारी। अम्बरीश सार्वभौम सम्राट है, वो तुझे कैसे स्वीकार करेंगे? लेकिन उसने कहा कि नहीं स्वीकार करेंगे तो मैं मेरी कुंवारी रहूंगी, विवाह करूंगी तो अम्बरीश के साथ करूंगी। पिताजी ने कहा कि भाई अब कैसे, बड़ी मुश्किल हो गई। तब जाकर के और ये बात हुई कि उसके एक बार प्रस्ताव तो भेजे, तो एक ब्राह्मण को तैयार करके राजा ने प्रस्ताव भेजा कि मेरी लड़की आपसे विवाह करना चाहती है, मैं बहुत छोटी रियासत का राजा हूं, मेरी औकात के बाहर बात है, लेकिन बेटी है, कुंवारी तो मैं रख नहीं सकता हूं, बेटी को कुंवारी रखने पर मां बाप को पाप लगता है और बेटी ने जिद कर ली है कि मैं तो अम्बरीश जी के साथ ही विवाह करूंगी, अब क्या करूंगा। तो अम्बरीश जी ने वापस समाचार लिखवा दिया, उस ब्राह्मण को बता दिया कि देखो भाई, मेरे यहां पहले से ही 100 रानियां हैं और मैं किन्हीं रानियों से कभी बातचीत करना, ठहाका मारना, सभा में लेकर इनको बैठना और इनको लेकर घुमाना, इतने मेरे पास समय नहीं है। मैं मेरे अपने समय को अपने लिए ही खर्च करता हूं। वो शायद ये सोच करके आती होगी कि मेरे यहां बहुत बड़ा ठाट बाट उसको मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, तो उसके लिए तो मेरे से शादी नहीं करे तो अच्छा है, मना कर दिया। अम्बरीश जी, वो ब्राह्मण गया राजा के पास, राजा को जाकर बोला, जी क्या बताया, अम्बरीश जी ने तो ये समाचार कहे। राजा ने अपनी बेटी से कहा कि देखो बेटा, जो राजा तुमको स्वीकार ही करना नहीं चाहे, फिर तुम उसके साथ क्या करोगी शादी? नहीं, मैं करूंगी तो अम्बरीश के साथ विवाह। अम्बरीश जी थे बहुत गुणी आदमी, भगवान के भक्त थे ना, तो गुणी आदमी थे। अम्बरीश जी को मालूम था कि ये मेरे से राजकुमारी क्यों विवाह करना चाहती है, मालूम चल गया। तो वो ब्राह्मण को उस पिता ने, लड़की के पिता ने दोबारा भेजा कि हम आपसे निवेदन करते हैं, हमारी बच्चे की प्रार्थना को आप मानिए, आपकी जो शर्त है वो मान्य है, जो भी आप शर्त डालना, विवाह के बाद यदि आप कभी उससे बात भी नहीं करो तो मंजूर है। जैसे सूर रानियों को आपने अलग थलग सा कर रखा है, ऐसे इसको भी आप अलग थलग कर देना, कोई इसको दुख नहीं है, कोई हमारी तरफ से शिकायत नहीं है, ये आप ही से विवाह करना चाहती। दोबारा गया वो ब्राह्मण, अमरीश समझ गया कि मैंने जो बात कही है उसका अर्थ वो रानी समझ गई है, वो रानी यहां मेरे वैभव को देखकर नहीं आना चाहती थी कि अम्बरीश का बड़ा ठाट बाट वैभव धन संपत्ति राज्य इसको नहीं देख करके आ रही, बहुत अच्छा। अम्बरीश ताड़ गई कि उसके मन में भगवत भक्ति है, फिर और परीक्षा ली अम्बरीश ने। अम्बरीश ने कहा देखिए जी, अब मैं शादी लेके करूंगा, बारात लेके जाऊंगा, लोगों को बुलाऊंगा, ये करूं वो करूं, इतना मेरे पास समय तो है नहीं, मैं तो अपने लौकिक कार्यों में से जबरदस्ती समय निकाल निकाल करके दूसरे काम में लगता हूं। अब अपने मुंह से कैसे कहे मैं भक्ति भक्ति में लगा रहता हूं। और अम्बरीश ने अपना सारा राजकाज मंत्रियों पर डाल रखा था, जो मंत्री कहते हैं वही ठीक है, वो तो अपना भगवान की भक्ति में लगा रहता है। तो कई देर तक विचार करने के बाद ब्राह्मण ने कहा महाराज फिर आपके मैं तो बारात लेके तो आऊंगा नहीं, ऐसे शादी करूंगा नहीं, एक शर्त है, ये मेरी तलवार है, यही मेरा प्रतिनिधि है, इस तलवार से ही फेरा दे करके आप उसको ले आओ, मैं स्वीकार कर लूंगा, ये ले जाओ तलवार ले जाओ। ब्राह्मण वो तलवार लेकर के पिता के पास आए, ये बात है। पिता ने कहा कि इसमें तो मेरी आन मान शान का प्रश्न है, तलवार के साथ विवाह करूंगा दुनिया मेरे मुंह पर थूकेगी कि अम्बरीश का ठेका लिया, किसी के साथ विवाह कर सकता था। पिताजी बड़े चिंतित रहे, लड़की ने पूछा पिताजी बात बताओ ना, ब्राह्मण देवता ने क्या क्या कहा है, तुमको बताऊंगा तो तुम दुखी हो जाओगी, नहीं बताऊंगा तो मैं अकेला दुखी हूं, तो अकेले को दुखी, बताओ तो सही बात क्या है, चेहरा पीला पड़ गया आपका थोड़े दिनों में, बताओ आप। तो उस राजा ने बेटी से तो कहा नहीं, बेटी की मां से कहा, मां के भी होश उठ गए, कह रही आज हम इतने गिरे हुए हैं कि हम तलवारों से शादी करेंगे हमारी बच्चियों की, दुनिया क्या कहेगी। लेकिन अब बच्ची माने तब ना, अब बच्ची इन दोनों से गई, मां तुम भी दुखी हो गई कि बेटा क्या बताऊं, न तो हंसने का समय है न रोने का समय है, तुम तो कहते हो प्रसन्न रहो और हम कहते हैं कि हमारे रोने का समय, इसे तो अच्छा बाबा मर जाए तो बड़ा अच्छा, बात तो बताओ कि क्या बताया। ज्यादा आग्रह किया तो मां के मुंह से निकल गया कि तू जिसको चाहती है वो राजा कहता है कि तलवार के साथ विवाह कर लो, और बहुत बढ़िया है मां। उस राजा ने कम से कम स्वीकार कर लिया, इतने बड़े राजा ने, कम बात है क्या कि बेटी तुझे कौन स्वीकार नहीं करे, सर्वांग सुंदरी सर्व सुलक्षणा, तेरे अंदर अनेक प्रकार की विशेषता, सब स्वीकार करने के लिए तैयार, तो अम्बरीश के पीछे क्यों पड़ी है, करूंगी तो मैं अम्बरीश के साथ। तो तलवार के साथ विवाह कर दो, जाऊंगी तो अम्बरीश के वहां चली जाऊंगी ना, जाएगी तो वही भी, तो आप मेरा इस तलवार को लेकर विवाह कर दो। पिताजी को भी समझा दिया, उसको भी समझा दिया, मान गए दोनों। अब क्या करें, लड़की का स्नेह भी प्रेम भी, और लड़की भी बहुत समझदार थी, समझदार नहीं थी, भगवत प्रायणा थी, भगवान की भक्ति में रहने वाले। अब उसका विवाह कर दिया, ये तलवार और उसको बाद भेज दिया। वही ब्राह्मण लेकर के आया, पहुंचा दिया अम्बरीश। अम्बरीश ने कहा बहुत अच्छी बात है, आओ महारानी जी। सार्वभौम सात द्वीप का स्वामी अम्बरीश उसकी 101वीं महारानी का इस महल में खूब खूब स्वागत है। परंतु आपका महल हमारी महल से, सो का उधर महल है, आपका इधर अलग महल है। बहुत अच्छा, कोई बात स्वीकार। अब वो महल में रहती अपने ठाकुर जी की पूजा करती है, और इधर उस राजा का जो महल था, इधर मानो 101वीं रानी का महल था, ठीक उसके बगल में ही राजा के आराध्य भगवान का जो मंदिर था, उस मंदिर में जाकर राजा पूजन किया करते थे ठाकुर जी की। और एक ठाकुर जी की मूर्ति अपने कक्ष में भी रखते थे, एक मंदिर में विराजमान, एक अपने कक्ष में हरदम विराजमान, ताकि उनका उनकी सकल सूरत देखते रहे। ऐसे करते करते थोड़ा सा समय बीता तो एक दिन रानी ने राजा के यहां रहने वाला जो सेवक था उसको बुलाया। उसको बुला करके कहा कि महाराज के यहां पूजा पाठ की व्यवस्था, सेवा की व्यवस्था कौन करता है? तो कहा कि वहां पर एक दासी रहती है, मंदिर में बाग बगीचे है, उस बाग बगीचे के फूल लेती है, वही चढ़ाती, वही करती है। अच्छी बात, उस दासी को भेज दो। दासी को बुलाया, दासी आई। क्या क्या है महारानी जी? भाई ये बताओ कि महाराज यहां हर समय रहते हैं, हर समय रहते हैं, बस एक सरयू नदी के स्नान करने के लिए जाते हैं, और वहां जाकर स्नान करके अपने हाथ से स्वर्ण कलश में जल लेकर के यहां आकर ठाकुर जी को चढ़ाते हैं। बस इतनी दूर यहां से जाना सरयू नदी और स्नान करना, पवित्र होकर के, और फिर जो है जल लाना। ये जाने आने और स्नान करने में जितना समय लगता है उतने समय तो ये वहां रहते हैं, और बाकी सारे समय में यही रहते हैं। ठीक है, कैसे पूछा महारानी जी? बस मुझे जानकारी लेनी थी। अब वो खाली समय में क्या किया, उसने एक ऐसी चैनदार निसरनी बनवाई रानी ने, ताकि अपने महल से उस निसरनी में चली जाए और तब तक के समय में जाकर ठाकुर जी की खूब बढ़िया पूजा कर दे। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, पांच दिन, रोज ऐसा हुआ। तो राजा ने कहा इतनी बढ़िया पूजा कौन करता है? दासी से पूछा, औरों से पूछा, क्या बात है, कौन आता है? दासी ने थोड़ी सी बात कही कि मुझे पूछा जरूर था, जो नई रानी जी आई है उन्होंने कि आप किस समय कहां रहते हैं, लेकिन मंदिर के अंदर कब जाते हैं, कौन जाता है, ये हमको पता नहीं। मंदिर के अंदर में तो हम हस्तक्षेप करते नहीं, हम तो बाहर की सेवा करते हैं। ठीक है, एक दिन राजा ने सुबह पहले लोग आते ही थे स्नान करने के लिए, चलिए कोई बाजा बजाता है, कोई क्या करता है, सवारी के साथ राजा जाते थे, सवारी के साथ रोज आते थे। तो राजा ने कहा हाँ ठीक है, आप लोग चलिए, हम आ रहे हैं। सबको भेज दिया, स्वयं जाकर के मंदिर के कोने में जाके छिप के बैठ गए। इधर जो और महारानी जी आई अपने बनावटी सीढ़ियों से उतर करके मंदिर के अंदर आकर के जो पूजा वगैरह करे छिप छिप के देख रहे राजा। और उस समय में जो पूजन करते समय में उस रानी के भाव इतने गदगद भाव, और वो प्रार्थना करती है, और फिर बैठ करके पूजा करके वहां पद गाती है, इतना विवल कर देती है। राजा स्वयं उन पदों को सुनकर के भगवान के विरह में चुप हो गए। नम राजा की समाधि लग गई और राजी को ये पता नहीं कि यहां पर कोई राजा सुनता है कि नहीं सुनता है। राजा फिर वो चली गई, राजा अपने हिसाब से चले गए। फिर राजा दूसरे दिन आए तो वो इसी प्रकार से गा रही है। गाते 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 उसके हाथ में से वीणा वगैरह है सब छूट जाती है और रोने लगती है, एकाग्र हो जाती है। तो दासी आकर के कहना चाहती है, राजा मना कर चुप चुप कि भाव में डूबी हुई है, अपराध लगता है। राजा ने बताया कई चीजों में भक्ता अपराध होता है। आप मंदिर में गए और किसी को हटा कर खुद आगे जाकर के दर्शन करेंगे, भक्ता अपराध है। भगवान का अपराध हो तो भगवान सहन कर सकते हैं, भक्त का अपराध भगवान सहन नहीं कर सकते। वो यू जाकर मना कर दिया। राजा भी वहां पर बैठ गया, दासी भी बैठ गई। ऐसे करते करते सब जगह बात फैल गई। अब वो जो सो रानियां थी, पहले तो उनके मन में डर था कि नई रानी आई है, इस नई रानी को इन्होंने पूजा का काम कैसे दिया, क्या दिया। लेकिन जब आकर उन्होंने देखा तो सबका स्वभाव बदल गया। सबने अपने घरों में ठाकुर जी रखना चालू कर दिया, अपने अपने महलों में। और राजा को कहा कि आप सब हमारे यहां आओ, एक दिन हमारे यहां सबके यहां आओ, एक 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 के आओ। राजा ने कहा कि आऊंगा सब जगह, इस जैसा भाव तुम्हारा नहीं है। अब उसका इतना विचित्र भाव हुआ, नारद जी खुद आए। नारद जी अम्बरीश से मिलने आए। अम्बरीश जी, हमने सुना है आपके कोई एक सबसे छोटी रानी कोई भगवान की बड़ी भक्ति करती है। इतनी बात सुनी अम्बरीश जी चुप हो गए। फिर कहा कि महाराज मैं जा सकता हूं, जाइए। मंदिर में गए, नारद जी कहते मैं इतनी राग रागनी गाता हूं भगवान के लिए, ऐसी समाधि मेरी नहीं लगती। तो नारद जी है उनकी समाधि लग गई। अब नारद जी ने उस सब सो रानियों से कहा कि देखो, जीवन को सफल करना है तो ऐसे भगवान में प्रेम करना सीखो। अब वो रानियां उस रानी को लेकर पूछती, तुम्हारा कि मैं प्रेम कैसे दे सकती हूं भगवान का। राजा के यहां पूजा में रहने वाले अलग जो ठाकुर जी थे, वो ठाकुर जी एक दिन राजा को स्वप्न में बोलते हैं कि तुम्हारे हाथ की सेवा से हमको इतना आनंद नहीं आता, तुम्हारी छोटी रानी के हाथ से सेवा में हमको बड़ा आनंद आता, हमको वहां पहुंचा दो। और जितनी रानियां थी उन रानियों को भगवान ने, ठाकुर जी ने दर्शन दिए रात्रि में स्वप्न में, कहा कि तुम हम सबको वहीं पहुंचा दो, हम सबकी सेवा हो, तुम भी वहां रहो। पर उसका स्पर्श करना हमको बहुत अच्छा लगता है, उसकी रागनी बड़ी अच्छी, उसका भाव बहुत अच्छा है, इसलिए तुम सब हमको तो उसी की ठाकुर जी में रख लग। तो इस प्रकार अम्बरीश की भक्ति बढ़ते 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 त्रिलोकी में खूब बढ़ गई। तो नाबाजी महाराज कहते हैं कि ऐसी भक्ति होती है जो सारे एक भक्त होता है वो सबको भक्त बना देता है। इस प्रकार से जैसे जिसके पास एक इत्र की शीशी होती है, थोड़ा 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 सब में लगा देते सबके अंदर सुगंधी आ जाती है, ऐसे ही अम्बरीश की भक्ति सारे वातावरण को सुवासित करने लग गई। और अम्बरीश ने अपनी भक्ति के द्वारा और अपने आसन के द्वारा संपूर्ण संसार को पवित्र कर दिया। रा
नारायण श्री